بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان کے عام انتخابات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے مگر مختصر سا وقت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اپریل سے شروع ہو کر 12 مئی تک چلنے والی پولنگ اور 9 مرحلے کے انتخابات کے 5 مرحلے اب تک انجام پا چکے ہیں اور 6ٹھے مرحلے کی پولنگ کے لیے آج انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. 24 اپریل کو ہندوستان کے عام انتخابات کے 6ٹھے مرحلے کی پولنگ ہوں گی اور 5ویں مرحلے کی طرح 6ٹھے مرحلے کی پولنگ کو بھی کافی اہم، فیصلہ کن اور حساس مانا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس مرحلے کی ووٹنگ یا پولنگ کے دوران بھی 100 سے زائد نشستوں کا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد جب 12 مئی کو آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی تو 16 مئی کو نتائج کا اعلان ہوگا. ظاہر ہے کہ سب کو انتظار ہے 16 مئی کا، لیکن اس وقت ہندوستان میں سیاسی درجہ حرارت اور انتخابی گہما گہمی اپنے نقطۂ عروج پر ہے. اس درمیان سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقیدیں اور الزامات لگا کر کہیں نہ کہیں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس بار جب بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریس کے ساتھ تیسرا محاذ ہوا کرتا تھا تو ایک چوتھا دھڑا بھی یا چوتھی قوت بھی سامنے آئی ہے جس کو عام آدمی پارٹی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، جس کے کنوینر کیجریوال ہیں اور جس نے، یعنی جس کی پارٹی نے بھی پچھلے دنوں یا پچھلے ہفتوں کے دوران دہلی کی ریاستی اسمبلی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. کچھ دنوں تک اس جماعت کی حکومت بھی رہی لیکن اس کے بعد اروند کیجریوال نے حکومت اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. فی الحال دہلی کی اسمبلی جو ہے وہ معلق اور معطل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار کے انتخابات کافی دلچسپ ہو گئے ہیں، لیکن جو اس وقت جادو چل رہا ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان، کانگریس اور بھارتی جنتا پارٹی کے درمیان. ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ انتخابی صورتحال اب تک کیسی رہی اور کیا ممکنہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو جو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں اور کیوں ہندوستان کے سیکولر ماحول کو اور گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان میں انتخابات کے 5 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں اور اہمیت کے لحاظ سے 17 اپریل کو ہونے والے 5ویں مرحلے کے انتخابات سب سے زیادہ اہم رہے، کیونکہ اس دن 13 ریاستوں میں 121 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ووٹنگ کا 6ٹھا مرحلہ 24 اپریل کو منعقد ہوگا، جس کے تحت 12 ریاستوں میں 117 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی. ہندوستان میں جو انتخابات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، مختلف جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شدت بھی آتی جا رہی ہے، اور اب مختلف سیاسی رہنما ایک دوسرے کی ذاتیات پر بھی کیچڑ اچھاڑنے لگے ہیں، جبکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے ان کے ووٹوں پر قبضے کی لڑائی بھی تیز ہو گئی ہے، جبکہ بی جے پی اور اس سے متعلقہ تنظیموں نے شدت پسند ہندوؤں کے ووٹوں کے لیے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. اس ضمن میں بہار میں ایک بی جے پی لیڈر نے اس پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کے مخالفین کو پاکستان بھیجنے کی بات کہی، جبکہ بی جے پی کی ذیلی تنظیم سمجھی جانے والی کونسل وشو ہندو پریشد کے اشوک توگڑیا نے گجرات کے شہر بھاونگر میں ہندوؤں سے یہ کہا کہ وہ اپنے علاقے میں مسلمانوں کو گھر نہ خریدنے دیں اور اگر وہ نہ مانیں تو زبردستی ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جائے. اس سے پہلے بھی بی جے پی کے اہم لیڈر امت شاہ نے یو پی میں ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ انتقام لینے کے لیے بی جے پی کو ووٹ دیں، جبکہ سماجوادی پارٹی کے اعظم خان سمیت دوسرے کچھ رہنماؤں کے خلاف بھی اشتعال انگیز بیان بازی کے الزامات عائد ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی میڈیا پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس بار کے انتخابات میں میڈیا نے کھل کر بی جے پی کا ساتھ دیا ہے، جبکہ ہندوستانی عوام میں بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چینل بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بی جے پی کے کچھ لیڈر بھلے ہی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان دے رہے ہوں، مگر بی جے پی نے اس بار مسلمانوں کو منانے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کی بھی بڑے پیمانے پر کوشش کی ہے، اور بہت سے مسلمان رہنماؤں نے ایسا موقف اختیار کیا ہے جس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حالیہ انتخابات میں مجموعی طور پر بی جے پی انتہائی جارحانہ انداز میں انتخاباتی مہم آگے بڑھا رہی ہے، جبکہ کانگریس دفاعی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، لیکن ان سب کے درمیان نئی بننے والی عام آدمی پارٹی بھی اظہار وجود کر رہی ہے، اور یہ پارٹی بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔
جناب ناظرین، اب چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی شکیل شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
شکیل صاحب، آج انتخابی مہم چھٹے مرحلے کی پولنگ کے لیے بھی ختم ہوا چاہتی ہے، اب تک پانچ مرحلے کے انتخابات ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بام عروج پر ہے، اب تک جو ماحول رہا ہے اور جو مراحل انجام پائے اس کو آپ نے کیسا دیکھا؟
دیکھیے، ابھی تک 232 سیٹوں کے لیے انتخابات ہو چکے ہیں اور 311 سیٹوں پر ابھی باقی ہیں، اور آدھے سے زیادہ انتخاب ابھی باقی، جس میں ایک بڑا مرحلہ جو ہے وہ پرسوں کا انتخاب ہے، جس کے لیے ابھی اس وقت تھوڑی دیر پہلے وہ انتخابی مہم کا خاتمہ ہو چکا ہے 5 بجے شام سے۔ تو کل ملا کر جو اس بار کا الیکشن رہا ہے وہ مودی بنام دیگر، کچھ اس طریقے سے بی جے پی نے پروجیکٹ کیا ہے کہ ساری سیکولر پارٹیوں کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور بی جے پی کو سامنے رکھا ہے۔ بی جے پی نے اس بار نہ کوئی منشور پیش کیا ہے، نہ کوئی ان کا کوئی ایسا کوئی عمل کا راستہ انہیں نے بتایا کہ جس پر وہ عمل کریں گے، کچھ نہیں، مودی 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 کا نعرہ جپ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور کیوں جپ رہے ہیں؟ کیونکہ مودی کی ایک امیج مسلم دشمن کی امیج ہے اور بی جے پی اس کو کیچ کرنا چاہتی تھی، لیکن بی جے پی نے بہت چالاکی کے ساتھ مودی کی امیج کے اوپر ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ترقی کا پردہ، کہ گجرات میں بڑی ترقی ہوئی ہے، گجرات میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور ویسا ہی ہندوستان کو ہم بنا دیں گے، یہ انہیں نے پیش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولرائزیشن ہوا اور پھر کہیں کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے سے اور فرقہ وارانہ ماحول خراب کر کے بھی انہوں نے اپنے لیے فضا ہموار کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ بی جے پی اس سے پہلے ملک میں 6 سال راج کر چکی ہے، اس 6 سال میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بی جے پی آج یہ سینہ پھلا کر کہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا ملک کے لیے، اور یہ بھی اس کے پاس جواب نہیں کہ اس کو اگر لوگ پسند کرتے تھے اس کو باہر کیوں کر دیا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی کو پروجیکٹ کیا ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی آدمی الیکشن لڑ رہا ہے، پارٹیاں الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں، ورنہ اب تک پارٹی الیکشن لڑتی، چاہے وہ نہرو لڑے ہوں، چاہے وہ اندرا گاندھی جیسی شخصیت لڑی ہو، چاہے وہ جے پرکاش نارائن آئے ہوں سامنے، ان کی سرکردگی میں جنتا پارٹی نے لڑا ہو، جو بھی تھا اس نے پارٹی کو آگے رکھا، شخصیت آگے نہیں کی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ بی جے پی نے ایک اسٹریٹجی بنائی سنگھ پریوار کے کہنے سے، آر ایس ایس کے کہنے سے انہیں مودی کو سامنے رکھا اور مودی کے اوپر ایک نقاب چڑھائی کہ وہ وکاس پروش ہیں، یعنی کہ ترقی دلانے والے انسان ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی کو جو پسندیدگی کی وجہ ہے۔
چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسا کہ شکیل شمسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی جمہوری تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کسی شخص کے نام سے الیکشن لڑا جا رہا ہے، پارٹی سے نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم آپ بی جے پی کی ہی بات کریں تو بی جے پی میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، مثلا اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور کم سے کم انہوں نے 3 بار تو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے، ظاہر ہے کہ ایک بار 15 دن کے لیے، ایک بار 1.5 سال کے لیے، ایک بار انہوں نے بہرحال پوری مدت اپنی پوری کی، لیکن بڑے لیڈر تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ اب کی بار واجپئی سرکار، لیکن اس بار کا جو بی جے پی کا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کی بار مودی سرکار، ایسا کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت بی جے پی نے مودی کو آگے کر کے کمپین چلائی ہے، لیکن کچھ تقریباً اس طرح کی صورتحال جو ہے ہمیں सेवेंटीज में, यानी 1970s में कुछ ऐसी सूरत हाल थी जब इंदिरा गांधी ने, जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को एक लीडर के तौर पर उभार कर जो है वो कंपेन चलाई। उन दिनों एक नारा वहां पे आम होने लगा, वो ये था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इंदिरा और इंडिया को इक्वेट कर दिया कि हिंदुस्तान की बात करें तो इंदिरा की बात करें, और इंदिरा की बात करें तो वो हिंदुस्तान की बात है। तकरीबन वही कुछ इस वक्त हो रहा है। लेकिन अजीब मसला है कि जमाना बदलता है, हकायक बदलते हैं। उस वक्त ये नारा जो है, इसका कांग्रेस ने इससे नतायज हासिल किए, इससे के हालात वो थे। लेकिन इस वक्त हालात तब्दील हुए हैं, और सीनियर तज्जिया निगारों की का ये खदशा है, मेरा खुद ये खदशा है कि शायद बीजेपी का ये गैम्बल जो है ये फेल हो जाए। ये एक गैम्बल है, ये इन्होंने बिल्कुल जुआ खेला है। इन्होंने मोदी पर जितना इन्वेस्ट किया है, अगर उसके रिटर्न नहीं आए तो अजीब सा रिबाउंड होगा। यानी इनका इनका मसला ये था कि ये जैसा कि शमसी साहब बता रहे थे, मोदी को मोदी की इमेज पर डेवलपमेंट का वो लगाए, एक खूबसूरत एक कवर लगाए डेवलपमेंट और गवर्नेंस का। लेकिन कुछ वो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चल नहीं रहा है। अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है, यानी जिसकी एक्सप्लेनेशन ही जरा मुश्किल है कि मोदी के ही लोग, उन्हीं के परिवार के लोग कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट के इश्यूज पीछे धकेले जाते हैं और कम्युनलिज्म का इश्यू सामने आता है। मसलन ये बात जो आपके इंट्रो में भी आई कि जो लोग मोदी के खिलाफ हैं और वो मोदी के बाद पाकिस्तान चले जाएं। अब अभी जो इंडिया के साथ जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, तो उसके जो वहां पे वजीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उनका उन्होंने अभी ट्वीट किया। उनने भी अपने एक टीवी बयान में कहा, मैं देख रहा था, उनने कहा था कि ठीक है, अगर मोदी वजीर आजम बन गए तो मैं पहली बस लूंगा श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक और पाकिस्तान चला जाऊंगा, फिर क्या चाह रहा है। तो ये जिस तरह का इस कंपेन में जिस तरह कम्युनलिज्म जो है वो सामने आ रहा है, और मोदी की यानी एक एतवार से उसका वो असल चेहरा भी सामने आ रहा है, तो वो बीजेपी के लिए अनवांटेड था। बल्कि आज खुद मोदी ने, अरुण जेटली ने, उन्होंने अपीलें की हैं कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, इसलिए कि इससे वो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के इशू पीछे धकेले जाएंगे और ये सामने आएगा, और ये बीजेपी के लिए भी अच्छी बात नहीं है।
जी,
तो
बहुत शुक्रिया।
लिहाजा मैं समझता हूं कि बीजेपी ने एक गैम्बल खेला है, लेकिन वो शायद इस पे कामयाब हूं या ना हूं ये देखने की बात है, और मैं समझता हूं कि शायद कामयाब ना होंगे।
बहुत शुक्रिया। इस वक्त चलते हैं दिल्ली, वहाँ एक और सीनियर और बुजुर्ग तज़ निगार मौजूद हैं, रबते में हैं, वैद्य प्रताप वैदिक साहब। आदाब आदाब जनाब।
आदाब आदाब।
वैद्य प्रताप वैदक साहब, अभी जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नाम पर एक जुआ खेला है, और अगर वो जीत जाते हैं तो जाहिर है कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। और इस बार के इलेक्शन में एक नई चीज़ सामने आई है कि फ़िरका वारियत को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। आप बुज़ुर्ग तज़े निगार हैं, जाहिर है कि आपने हिंदुस्तान की पूरी जमहूरी तारीख देखी है, क्या माजी में भी ऐसा होता रहा है कि फ़िरकों के नाम पर, मज़हब के नाम पर या ज़ात पात के नाम पर इस तरह से इलेक्शन लड़ा गया हो?
नहीं, मुझे तो लगता है इस बार फिरका परस्ती और जात पात बिल्कुल पीछे चले गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा जो मामला बना है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। करप्शन इस कदर फैल गया हिंदुस्तान में कि जितनी लूट मार पिछले 10 साल में हुई है, अंग्रेज के 100-150 साल में नहीं हुई। इस हालत में ये सारे जो दूसरे मुद्दे हैं, जात के और मजहब के, ये सब हाशिए में खिसक गए हैं। और अगर लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो कोई उसकी जात की वजह से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ इस बात के लिए पसंद कर रहे हैं कि वो करप्शन को खत्म कर सकता है। मोदी में खास खूबी नहीं है, खूबी है सबसे ज्यादा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में, कि जिन्होंने मोदी को हीरो बना दिया है, उनके निकम्मेपन के वजह से सारे मुल्क में तोबा तोबा हो रही है, हाय हाय हो रही है, सब लोग उनको हटाना चाहते हैं। लोग इतने बेसब्र हो गए हैं कि मोदी की जगह कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई निकम्मे से निकम्मा आ जाए, दुष्ट से दुष्ट आदमी आ जाए, खराब से खराब आदमी आ जाए, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भागे, ये सारा मुल्क चाहता है। ऐसे मौके पे मोदी झंडा लेके आगे खड़ा हुआ है और लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। 1971 में जो इंदिरा गांधी की लहर थी, उससे ज्यादा मजबूत लहर इस समय मुल्क में मोदी की है
जी। वैद्य प्रताप वैदक साहब, अगला सवाल भी आपसे ही करना चाहूंगा। जाहिर है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में करप्शन एक बड़ा मसला है, और आप कह रहे हैं कि इस बार करप्शन के खिलाफ जो है ये मुहिम चल रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और बाज़ हलकों का ये कहना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खास तौर पर मोदी को प्रोजेक्ट किया है और जिस तरह से ब्लैक मनी काला धन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये करप्शन के जुमरे में नहीं आता? या भी आपने चंद रोज कबल बाबा रामदेव की वो गुफ्तगु नहीं सुनी स्टेज पर, जब वो उदयपुर में गालिबन राजस्थान में एक स्टेज पे बैठे हुए थे और ये बात कर रहे थे कि यार पैसा मुंतकिल नहीं हो पा रहा, उनके एक साथी कह रहे थे, तो वो कहते इस तरह की बात स्टेज पर नहीं होना चाहिए, तो यानी वो भी तो काला धन ही था, या उसी की बात हो रही थी?
नहीं नहीं, उसका काले धन या सफेद धन या लाल धन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक दूसरा महंत था सन्यासी, वो बाबा रामदेव से कह रहा था कि मुझे पैसा लाने में बहुत तकलीफ हो रही है, पैसा आ नहीं रहा है। तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों रुपया खर्च होता है, और हिंदुस्तान का एक भी उम्मीदवार, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रकाश कारत हो, चाहे मुलायम सिंह हो, बिना कैश के, बिना पैसे के, बिना करोड़ों रुपए खर्च किए कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो नगद रुपया मांगे बिना चुनाव लड़ लेगा।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन के मामले में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन के मामले में सबके ही दामन दागदार हैं?
करप्शन के मामले में, खासतौर से चुनावी करप्शन के मामले में, किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का दामन साफ नहीं है। लेकिन इस समय मुल्क में मजहब और जात के मामले बिल्कुल पीछे खिसक गए हैं। सब लोगों को ये लगता है कि मोदी आएगा तो करप्शन दूर हो जाएगा, अल्लाह जाने करप्शन दूर होगा कि नहीं होगा, मोदी कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उसको लोग कुछ करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये अल्लाह जानता है, भगवान जानता है। लेकिन इस समय देश में जो लहर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए आम जनता जो होती है, जो आवाम होते हैं, वो धक्के में चलते हैं, वो कोई मंतक से, कोई लाजिक से, कोई दलील से, कोई दिमाग से सोच के काम नहीं करते हैं। करोड़ों लोग वो एक हवा में बहते रहते हैं, अब वो हवा में इस वक्त बह रहे हैं, मजबूरी है मुल्क की, क्या करें
जी। आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा वैद्य प्रताप वैद्य साहब, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। शकील शमसी साहब, आपने वैदक साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इनके बयान पर, कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए वैदिक साहब बहुत पुराने साहबी हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, और उनको लग रहा है कि लहर आई है, हम लोगों को नहीं लगता लहर आई, क्योंकि ये इससे पहले भी लहर की बात की गई थी और दिल्ली में उसमें उस लहर में पंक्चर कर दिया था केजरीवाल ने। तो ये लहर तो बहुत दिनों से बीजेपी दिखा रही है और मीडिया भी दिखा रहा है, यहाँ का लहर क्या है वो सोना को सामने आ जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने इतने दिनों में दौरा किया इलेक्शन में, मुझे तो नहीं नजर आई कोई लहर। हाँ, बीजेपी के कारकुनान में बड़ा जोश है, बीजेपी के कारकुनान इतने ज़्यादा जोश के साथ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो उनके में लहर है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि जो आदमी बीजेपी जो मुखालिफ ग्रोह है उसमें आपको कहीं नजर आए, कहीं कहीं तो आपको दूर दूर पता नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि 15 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में कि जहां से बीजेपी का एक मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं था पिछली लोकसभा में, आज भी उनकी सिर्फ 6 जगह के ऊपर उनका हुकूमत है उनकी, उसके बाद भी उनको लगता है कि लहर चल रही है। ये लहर मीडिया की क्रिएट की हुई है और बताने की कोशिश की जा रही है लोगों को लहर है, मुझे नहीं लगता कोई लहर है। और जहां तक वैदिक साहब ने ये बात कही कि फिरका वाराना बात पर नहीं हो रहा इलेक्शन, उनकी बात में कुछ कुछ दम है कि फिरका वाराना बुनियादों पर नहीं हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल के आने के बाद से करप्शन बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि बीजेपी जो है बीजेपी का खुद दामन बहुत दागदार है। आपको पता है कि येदियुरप्पा जैसे लोग भी इनके साथ हैं, इनके जो सदर हैं नितिन गडकरी वो भी उन पर भी इल्जाम लग चुके हैं। इससे पहले इनके एक सदर को जेल में रहना पड़ा जो मर गए भी हाल में, बंगारू लक्ष्मण। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी जो है वो कोई करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी करप्ट लोग शामिल हैं पूरी तरीके से। तो करप्शन का एक एक आदमी ने इशू उठाया, वो मोदी नहीं है, वो है केजरीवाल, जिसने मोदी के करप्शन को भी नुमाया किया है, कांग्रेस के करप्शन को भी नुमाया किया है। और इसीलिए सिर्फ 4-5 महीने के अंदर उस पार्टी को इस मुल्क के लोगों ने इतना पसंद किया है कि वो दूर दूर तक फैल गई है और 450 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है आज। तो ये करप्शन है मैं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के जो साथी हैं वो इसको कमलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। कल बंबई की जो रैली थी जिसमें खुद मोदी बैठे हुए थे, शिवसेना वाले बैठे थे, वहां कदम ने क्या कहा, जो शिवसेना का मेंबर था उसने कदम ने कहा कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे मोदी साहब। ये क्या तरीका है, ये कौन सी गुफ्तगू हो रही है? अगर ये करप्शन करना, फिर उसके बाद कहा कि आजाद मैदान में 50,000 मुसलमान जमा हो जाते हैं, हमारी माँ बहनों के लिए खतरा बनते हैं, उन पर भपकियां कसते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं उस स्टेज से जहां मोदी मौजूद है, फिर ये कहते हैं कि ये करप्शन उसके ऊपर नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, इस मुल्क में करप्शन पर ही इलेक्शन होना चाहिए, इस मुल्क में विकास पर ही इलेक्शन होना चाहिए, इस मुल्क में मोहब्बत के नाम पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। गिरिराज ने क्या कहा बैठ के, और उस पर अपनी जगह पर एडमिट है वो, राजस्थान की जो चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, उन्हीं ने क्या फरमाया। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि जिससे लोग भड़कें, जिससे माहौल खराब हो। और दूसरी पार्टियां भी, खुद इधर से भी जो आजम खान की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, तो कभी कांग्रेस के इमरान मसूद कुछ कह देते हैं, इन सब बातों के ऊपर कदगन लगना चाहिए, इनकी रोक होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क को एक अच्छे गवर्नेंस की जरूरत है, एक अच्छी हुकूमत की जरूरत है, और हुकूमत वो फिरकावाराना बुनियाद पर नहीं आना चाहिए, वो सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं आना चाहिए, वो कम्युनलिज्म के नाम पर नहीं आना चाहिए। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोग उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर लगता है कि इन दोनों के बीच से घबरा कर, बीजेपी और कांग्रेस से घबरा कर, कुछ लोगों को एक निजात का रास्ता मिला और वो केजरीवाल की शक्ल में उनके सामने है। केजरीवाल को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन केजरीवाल बहुत लोगों का खेल बिगाड़ेंगे, ये बात तय है। और केजरीवाल ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया है जिस तरीके से राहुल और मोदी के खिलाफ, वो भी काबिले तारीफ है कि उन्होंने खुद अपनी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी के आगे जीतना मुश्किल है, लेकिन वो बनारस पहुंच गए लड़ने के लिए। और इसी तरीके से कुमार विश्वास जो उनके सेकंड मैन है, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो करप्शन के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो माफ कीजिएगा वैदिक साहब, मोदी साहब नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने अगर लड़ा होता तो येदियुरप्पा को आप मिलाते नहीं उससे पहले। मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कोई करप्शन के नाम पर लड़ रहा है तो वो केजरीवाल लड़ रहे हैं, और वो सही लड़ रहे हैं कि उनको किसी किस्म के करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और ना होंगे।
जी बहुत शुक्रिया अंद्राबी साहब, आपसे माजरत के साथ मैं अभी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ। मैं वैदिक साहब से ही पूछना चाहूँगा, वैदिक साहब, शकील शमशी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी?
उनकी बात बहुत हद तक ठीक है, वो जो कह रहे हैं बहुत दुरुस्त बात है कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है, और अरविंद केजरीवाल का
जी जनाब वैदिक साहब से रब्ता फिलहाल मुनकता हो गया है, माफ़ कीजिएगा। अब चलते हैं लंदन इंस्टीट्यूट जहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अंद्राबी साहब। अंद्राबी साहब जी, माजा चाहता हूँ आपसे, आम ख्याल मीडिया की तरफ से जो ये एक लोगों के जहनों में बिठाया जा रहा है ये कि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जारहाना पोजिशन में है और कांग्रेस दिफाही पोजिशन में है, क्या ये सही है?
ये इस हद तक सही है, शायद शकील शमशी साहब बेहतर इसके बारे में कह सकते हैं कि इस हद तक सही है। यानी देखने में ऐसा लग रहा है कि उनकी रैलीज और मोदी की प्रोजेक्शन और उनका इस वक्त मीडिया पर जो उनकी प्रेजेंस है, आप खुद फरमा रहे थे कि मीडिया का एक बायस है उनकी तरफ, तो उस तरह से उनको बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा उभरे हुए लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि उसमें इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का जो रूल रहा है उसमें करप्शन के कई कई वाकत सामने आए हैं, और भी चीज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज सामने आए हैं। तो लिहाजा एक एंटी इनकम्बेंसी जो एक सेंटिमेंट और वेव है, वेव ना कहें, एक सेंटिमेंट जो है उसका होना जरूरी है, वो डेफिनेटली है वहां। और अगर बीजेपी चाहती तो उसका वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकती थी अगर वो गवर्नेंस के इश्यूज को सामने लाती। लेकिन मेरा यही पॉइंट था कि उन्होंने जो सारा इन्वेस्टमेंट मोदी की पर्सनैलिटी पर किया तो ये उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए कि मैं जो आपको मिसाल दे रहा था इंदिरा गांधी की, उन दिनों इंडिया की हैसियत ही कुछ और थी, आजकल आज कुछ और है। अब देखिए यूपी में क्या मामला है, यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जोरदार रीजनल पार्टीज हैं। उनकी ये जो हमारे सहाफी कह रहे थे, आपके मेहमान वेद वेद साहब, उनका यानी वो इससे इनकार नहीं करेंगी कि उनकी बहुत ही एक सॉलिड प्रेजेंस है, एक सॉलिड वोट है उनका। बीएसपी का, समाजवादी पार्टी का, ये मसला उस वक्त नहीं था 70s की दहाई में। उड़ीसा में उनकी रीजनल पार्टी मजबूत है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, और साउथ में तो है ही, साउथ में बीजेपी का कोई खाता ही नहीं है और वहां रीजनल पार्टीज हैं। तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये एक फैक्टर है। केजरीवाल का फैक्टर तो बहुत जोरदार है और रिसेंट है कि उन्होंने, जैसा कि शमसी साहब सही बता रहे हैं, कि वो कई लोगों का खेल खराब करेंगे, डेफिनेटली खराब करेंगे। उन्होंने जो डेंट ऑलरेडी किया है, तो लिहाजा उन अवामिल की बिना पे मैं ये कह रहा था कि बीजेपी का ये जुआ कि वो मोदी पर सारा इन्वेस्ट करे, शायद जो है वो कामयाब नहीं होगा, उनको पछताना
जी
पड़ेगा।
जी बहुत शुक्रिया वैदिक साहब, आपसे गुफ्तगू मुनक़ता हो गई थी टेलीफोन लाइन की खराबी की वजह से। जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। वैद प्रताप वैदिक साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? दोबारा ऐसा लगता है कि गुफ्तगू मुनक़ता होगी। बहरा मैं शकील शमसी साहब से पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले तीसरे महाज की बड़ी बात की जा रही थी, वो किस पोजीशन में आपके ख्याल में?
देखिए, तीसरा महाज कभी इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान में कुछ चला नहीं है कभी भी। तीसरा महाज अगर बनने की बात होगी तो इलेक्शन के बाद बनने की बात होगी कि क्या उसके कौन कौन लोग कितनी सीटें लेकर आते हैं। अभी तो तीसरा महाज कुछ है नहीं, बनाने की कोशिश की गई। अगर पहले से कुछ कोशिश करके बनाया जाता हो, तीसरा महाज मुश्तरका तौर पर लड़ता तो कुछ नतायज दूसरे होते, लेकिन ये बात का हमेशा एक होता है कि हम थर्ड फ्रंट निकाल कर लेकर आए। देखिए, मोदी की कामयाबी अगर मोदी को मिलेगी किसी वजह से भी, तो सिर्फ एक वजह है, ना उनकी कोई लहर है, ना वो विकास पुरुष है, ना वो कोई अच्छे काम करते हैं, उनकी कोई ऐसी वजह नहीं। अगर अगर वो कामयाब हुए तो सिर्फ इस वजह से होंगे कि जो हिंदुस्तान का गैर बीजेपी वोट है वो तीन हिस्सों में तकसीम हो रहा है, कहीं कहीं चार हिस्सों में वो तकसीम हो रहा है, कहीं वो बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और मकामी पार्टियां हैं, तो वो वोट बट रहा है हर जगह। तीन चार बंगाल है तो वहां पर भी कम्युनिस्ट भी है, कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। ये जो तकसीम हो रही है, जिसको यहाँ सेकुलर वोट कहा जाता है, सेकुलर वोट बैंक कहा जाता है, वही हाल मुसलमानों का वोट का है कि मुसलमान अच्छी खासी हैसियत में है कई सूबों में, जहाँ के ऊपर वो बहुत ही अहम किरदार निभा सकते हैं इलेक्शन में। लेकिन क्या होता है कि उनका वोट अलग अलग बट रहा है। जो मौलाना है, जो ग्रो है, जो तंजीम है, वो अलग आदमी को वोट देने को कह रही है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इधर खुद मुसलमानों में एक डेवलपमेंट आ रहा है कि वो बहुत टेक्टिकल वोटिंग करने लगे हैं, और इलेक्शन की शाम को मुसलमान मकामी तौर पर तय करते हैं कि किस ऐसे आदमी को हम वोट दे दें जिसके जरिए से हम बीजेपी को हरा सकें। तो ये कोशिश हुई है, लेकिन थर्ड फ्रंट जहां तक है उसकी कोई कामयाबी का मुझे रास्ता नजर नहीं आता। वो बात की चीज है कि कहां से होगा। ये भी हो सकता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि मोदी जो है उनका ख्वाब यूं चकनाचूर हो कि अगर एनडीए को 220 के करीब सीटें मिलेंगी तो 220 के बाद उनको 52 सीटें और चाहिए मेजोरिटी के लिए, और फिर मेजोरिटी के लिए वो अपने पुराने जो उनके रफका हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, जिसमें जयललिता भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनको वो शामिल करने की बात कर सकते हैं, और उनसे वो मांगेंगे कि हमको हमारी हिमायत करो, और वो हिमायत इस शर्त पर करेंगे कि मोदी को हटाकर आप दूसरे को वजीर आजम बनाइए तो हम करेंगे। ये भी है जो थर्ड फ्रंट के अलावा एक रास्ता ये भी निकल सकता है। थर्ड फ्रंट बहुत दूर की मंजिल है, थर्ड फ्रंट का अभी कुछ नजर नहीं आता, वो बाद में होगा। कांग्रेस का जहां तक मामला है, कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल मैदान में नहीं है। मकामी तौर पर जो पार्टियां हैं वही इलेक्शन लड़ रही हैं, वही। और दूसरी बात जो खास है पूरे इलेक्शन में, जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है कि इस बार कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, पार्टी कोई ऐसी नहीं है। या तो मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ रही है, वहां कैंडिडेट कोई नहीं है, वहां जो आदमी वोट दे रहा है वो मोदी को वोट दे रहा है, ये सोचकर कहीं कहीं तो लोगों को अपने कैंडिडेट का नाम भी नहीं मालूम है। लेकिन जो ये तबका है, जो दूसरा तबका है, वो कैंडिडेट देखकर वोट दे रहा है कि कौन सा मजबूत कैंडिडेट है, कौन सा अच्छा ईमानदार कैंडिडेट है, किसको कहां जिताया जाए। तो ये सिलसिला भी चल रहा है कि इस बार पार्टियों से ज्यादा कैंडिडेट के ऊपर लोगों का ध्यान है, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन में रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले आएंगे, जिसका अभी लोगों का अंदाजा नहीं है। अभी तक जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से किसी ने 200 से 250 सीटें दे दी हैं बीजेपी को, किसी ने तो 300 तक हद पहुंचा दी है, क्या वो 300 भी मिल जाएंगी। लेकिन ये सारे सर्वे हिंदुस्तान में हमेशा गलत साबित होते रहे। सर्वे तो हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ का वोटर सही बात बताता नहीं है, तो और आखिर तक उसको सीक्रेट रखने की कोशिश करता है वो। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन है उसमें कुछ नई चीजें निकल कर सामने आएंगी। हो सकता है ये भी एक इम्कान है कि थर्ड फ्रंट निकल कर आए, जीते, और उसको बाद कांग्रेस भी उसको पीछे से सपोर्ट करे कि हमको बीजेपी को बाहर करना है, क्योंकि बीजेपी को बाहर रखना उनके लिए बहुत बड़ी जरूरत है, और मोदी को ना आने देना उनके लिए बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मोदी का आ जाना एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी पूरी सेकुलर फोर्सेस की, और बीजेपी के लिए भी अगर मोदी नहीं आते तो बीजेपी का दुकान जो है वो अगले 10-12 साल के लिए बंद हो जाएगी। और इस बार अगर बीजेपी ने 10,000 करोड़ का जुआ खेला है मोदी के पीछे, और अगर ये 10,000 करोड़ रुपए उसके पानी में बह गए तो बीजेपी बहुत सालों तक ये ख्वाब देख नहीं सकेगी कि हिंदुस्तान पर राज करेगा। 10 साल से ऑलरेडी वो बाहर हैं, 10 साल होने हो चुके हैं उनको बाहर किए हुए, इस मुल्क ने बाहर किया था। और उस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अली अब्बास साहब कि उस वक्त भी ऐसी ही लहर, अभी 2009 के इलेक्शन में और 2004 के इलेक्शन में भी मीडिया ने ऐसी ही लहर दिखाई थी, और शाइनिंग इंडिया, इंडिया शाइनिंग, और मोदी, और वो जो बातें उन्होंने की थी उस वक्त भी ये लगता था कि जैसे बीजेपी लौट आएगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब हैरान रह गए।
बहुत शुक्रिया शकील साहब,
किसी को उम्मीद नहीं थी।
वैद्य प्रताप वैद्य साहब, क्या आप अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे?
मैं
अर्ज कर रहा था कि आप अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपने कहा कि इस बार करप्शन के खिलाफ लहर है, लेकिन शकील शमसी साहब ने कहा कि हाँ करप्शन के खिलाफ लहर है लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इसमें शक नहीं कि बाज अनासिर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को पारा करना चाह रहे हैं और फिरकावाना माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, जैसे बिहार में गिरिराज सिंह या गुजरात में परवीन तुगड़िया या राजस्थान में सिंधिया जैसे लीडरों ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे एक ख़ास फिरके में खौफ और वहशत का माहौल पैदा हो। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?
नहीं, ये बात तो इनकी कुछ हद तक ठीक है, ये प्रवीण तोगड़िया और गिरिराज वगैरह इनकी बात की कोई सीमत नहीं है मुल्क में, इनकी बात को दो कोड़ी भी इज्जत कोई नहीं करता है। इनकी पार्टी जिससे वो बहुत हमदर्दी रखते हैं उस पार्टी बीजेपी ने भी उनकी बात को रद्द कर दिया है। जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी बराबर फिरका वाराना दोस्ती की बात करते रहे हैं पिछले 6 महीने से। मोदी ने एक भी बात ऐसी नहीं कही है कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, बल्कि मुसलमानों का दिल जीतने की मोदी बराबर बात करते रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी कितनी ही बात करें लेकिन मुसलमानों ने इतनी बुरी तरह से चोट खाई है 2002 में कि कोई भी मुसलमान शायद आगे होकर मोदी को वोट नहीं करेगा। कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी मुसलमान मोदी का समर्थन कर रहे हैं, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खास वजूहात हो सकती है। लेकिन इस समय मुल्क के ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिरका वाराना बढ़ गए हैं सियासी तौर पर, लेकिन ज्यादातर लोग जात और मजहब की बात को भूल कर अभी सिर्फ करप्शन के सवाल को बड़ा मान रहे हैं। और करप्शन के सवाल को बड़ा बनाया है, ना तो मोदी ने न केजरीवाल ने करप्शन के सवाल को सबसे बड़ा बनाया है, मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह मेरे शख्सी तौर पर अच्छे दोस्त हैं, बड़े भले इंसान हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं। उनकी शराफत बर्दाश्त की हद है। उन्होंने सारे करप्शन को हिंदुस्तान में लगातार बर्दाश्त किया है। उनकी मंत्रियों पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई है, उन्होंने करप्शन को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनवाया है। उसके लिए जिम्मेदार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह है। अरविंद केजरीवाल तो नो से किया है और सचमुच देश के सारे नेताओं से हिंदुस्तान की जनता तंग आ गई थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे बुलबुले को उन्होंने सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन नेताओं से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। उसने माइनॉरिटी में होते हुए दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। इस करप्शन वाली पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, उसी करप्शन गुरु पार्टी से उन्होंने समर्थन लिया और उसके कंधे पर चढ़ के सरकार बनाई। और उस सरकार ने किया क्या? उन 50 दिन चलने वाली उस सरकार ने कोई बहुत बड़ा नमूना पेश नहीं किया अच्छाई का, इनमेच्योरिटी। और उन्होंने भी, अरविंद मेरे तो शिष्य की तरह है, मेरे शागिर्द की तरह है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि उसने बजाय इसके कि अपोजिशन में रह के वो भाजपा को बनाने देता, बीजेपी को बनाने देता और बीजेपी की टांग खींचता, बीजेपी की बांह मरोड़ता तो एक राष्ट्रीय नेता बन जाता। लेकिन अब उसकी इज्जत पहने में बैठ चुकी है। उसके कुछ उम्मीदवार जरूर जीतेंगे, जैसे जिनका नाम मैंने पहले लिया, वो लोग बड़े आदमी है, वो हार भी जाए तो उनकी वजह से अरविंद केजरीवाल की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि लोग कांग्रेस से निजात पाना चाहते हैं। कांग्रेस से निजात अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी नहीं दिला सकती, क्योंकि उनका तो दिल्ली के अलावा कहीं नामो निशान नहीं था। जो पार्टस लोग इधर उधर से खड़े हुए हैं, अगर वो कोई जीते भी है तो अपने दम पर जीतेंगे, और जीतने के बाद वो केजरीवाल की सुनने वाले है नहीं, क्योंकि केजरीवाल तो अभी कल का लड़का है। उसके मुकाबले इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, राजमोहन गांधी और प्रोफेसर आनंद कुमार और योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर, बहुत लंबी लड़ाइयां इन लोगों ने लड़ी है। अरविंद तो अभी 2-3 साल से नेता बना है और एक हवा में फूंक में नेता बन गया है जी। मैं समझता हूँ कि देश में एक मजबूत सरकार की जरूरत है और वो जरूरत मोदी पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता है। करेगा कि नहीं करेगा ये भगवान जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क ने मन बना लिया है। आप कहते हैं कि 15 राज्यों में बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है, एक भी उनका उम्मीदवार न विधानसभा में है न लोकसभा में है, ये बात ठीक है। लेकिन आप देखें कि उत्तर भारत में यानी शुमाली हिंदुस्तान में आज तक एक भी लीडर ऐसा नहीं हुआ है कि जो कर्नाटक में जाए, केरल में जाए, अरुणाचल में जाए, लद्दाख में जाए और उसकी सभा में 1-1 लाख आदमी हो। इस समय मोदी की सभाओं में, उसकी पब्लिक मीटिंग्स में 1-1 लाख आदमी हर जगह से इकट्ठा हो रहा है।
बहुत शुक्रिया अवैध प्रताप अध्यक्ष साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास वक्त अब बहुत कम बचा है, 5 मिनट का वक्त है। 2 मिनट हम अंद्राबी साहब से लेंगे और 2 मिनट शकील शमसी साहब से। अंद्राबी साहब, क्या कांग्रेस के पास 10 साल के अरसे में जो उसने कुछ किया इस इलेक्शन में पेश करने के लिए कुछ नहीं? मनरेगा जैसी स्कीम या दीगर उसके जो कारनामे रहे?
जी कुछ
मैंने कहा कि कांग्रेस के पास गुज़िश्ता 10 साल के कारनामों में आवाम के सामने पेश करने के लिए कुछ नहीं, अगरचे कहा जाता है कि मनरेगा स्कीम और इस जैसी दीगर स्कीमों पर उसने काफ़ी काम किया जिससे लोगों को काफ़ी फायदा भी पहुंचा है। बजाय ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। शकील शमशीर साहब, अगर आपने मेरा ये सवाल सुना हो तो उसका जवाब आपसे चाहूँगा।
जी आप देखिए, कांग्रेस के पास जो इश्यूज थे मैं अर्ज करूं आपसे कि कांग्रेस ने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं कि उन लोगों ने काम नहीं किया है, और काफ़ी तरक्की में और 10 सालों में जो कुछ दिल्ली में हमने देखा है या जो दिल्ली की सूरत बदल गई है, और जिस तरीके से यहाँ मोबाइल का फैलाव हुआ, जिस तरीके से मेट्रो आई, जिस तरीके से और बड़े बड़े काम हुए, ऐसी बात नहीं काम किए, लेकिन हर काम में कहीं ना कहीं करप्शन सामने आ गया, और जब वो करप्शन सामने आया उसकी वजह से एक इमेज खराब गई और उनका जो किए धरे पर उनके पानी पर गया, वरना मनरेगा उन्हीं ने किया, उन्हीं ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत से काम किए उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं कि उनकी कोई तामीर और तरक्की में काम ही नहीं किया, लेकिन उस पर पानी फेर दिया है सारा कुछ करप्शन ने, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जहाँ तक वैदिक साहब ये कह रहे थे कि वो नौसिखिए हैं, जो भी है उनके लिए तरह तरह की बातें कह रहे थे हमारे केजरीवाल साहब के लिए, तो उनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि उस आदमी ने जो गैम्बल खेला था, जो दिल्ली में उसने किया था, उसने कितना ज़बरदस्त एक्सपोज किया। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि उसने ये साबित किया कि बीजेपी और कांग्रेस अंदर अंदर मिली हुई है, उसने ये साबित कर दिया एक बात पर कि हमको हटाने के बिठा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको। उसने कहा कि मैं अपने उसूलों पर समझौता नहीं कर सकते, हुकूमत से चिपका रहना बड़ा आसान है, हुकूमत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और ये काम केजरीवाल ने करके दिखाया है। तो ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल उसको नकार दें और ये सोचें कि चंद कैंडिडेट उनके अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। इस वक्त आप, मैंने कहा ना कि आप हो सकता है कि बहुत जगह कामयाब ना हो, लेकिन आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो बेइंतहा के इनका खेल खराब कर रही है, खासतौर से बीजेपी का, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ता, जो कांग्रेस के खिलाफ वोट जाता था वो कहाँ जाए, वो इनकी तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी वजह से बीजेपी को जो गेन की उम्मीद थी वो गेन उसको नहीं हो पा रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कोई मुतबादिल नहीं था तो बीजेपी आगे आ गई, राजस्थान में भी यही हुआ, लेकिन दिल्ली में एक मुतबादिल मौजूद था तो लोगों ने फौरन उसको वोट किया, और यही जो चीज़ है जिसकी वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है बीजेपी। और जो अरविंद केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं, 5 बार उस पर हमले हो चुके हैं, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने घूसा मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, ये क्यों हो रहा है, क्यों बीजेपी की परेशान है?
शकील शमसी साहब, आखिरी सवाल और बहुत मुख्तसर जवाब चाहूंगा। शकील शमसी साहब, आखिरी सवाल और बहुत मुख्तसर जवाब के, कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में रहता है और हिंदुस्तान की ज्यादा आबादी गांव में, क्या शाइनिंग इंडिया या बीजेपी का नारा गांव तक पहुंचा है और मोदी की लहर गांव गांव में भी है, या कांग्रेस अपने को गांव में पहुंचा सकी है मुख्तलिफ स्कीमों से, तो गांव का वोट किसको जाएगा?
देखिए, गांव का जो मामला होता है, गांव का बड़ा मकामी एतबार से वोट दिए जाते हैं, और गांव में जात पात का मसला बहुत चलता है। देखिए, आज जहां पर भी वोटों की काउंटिंग होती है, जहां पर भी आदमी गिन रहा होता है वोट, वो कहता है यहाँ यादव इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं। वहां कोई भी गांव में जो ज्यादातर होता है, ना कोई तरक्की पर देता है वोट, ना कोई तामीर पर देता है, ना पॉलिसीज पर वोट देते हैं। वहां पर असरदार लोगों के जो रसूख होते हैं वो काम आते हैं और वो वोट दिलवाने का काम करते हैं, और उसके लिए वो तरह तरह की चीजें बताते रहते हैं, और कोई ना कोई बहाना, कभी वो कह देता है कि कुर्मी खड़ा कुर्सी, तो वो पूरा कैलकुलेशन जो बीजेपी भी करती है उसमें भी ये बात ध्यान रखती है कि कहां से हम किसको वोट दें, कौन आदमी यहां से जीत सकता है जो जात की बुनियाद पर ज्यादा ज्यादा वोट लेकर आ सकेगा। यहां तक कि बनारस में बीजेपी काउंट कर रही है कि कितने जो है अजय राय को वोट दे सकते हैं और कितने उनकी तरफ आ जाएंगे, बीएसपी का जो टूटा हुआ दलित वर्ग है वो उनके साथ आ जाएगा। ये सारे कैलकुलेशन गांव में चलते हैं, और गांव में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टेलीविजन देखा करता है या उसको लहर पर उसका असर होता होगा। वहां पर जो कुछ बात होती है वो मकामी इश्यूज पर होती है और मकामी तौर पर लड़ा जा रहा है, और इसीलिए हर गांव में एक अलग तरीके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू थी और मुख्तलिफ नज़रियात सामने आए, लेकिन बहरहाल हमें और आप सबको तो इंतज़ार करना पड़ेगा 16 मई के नतायज का, और इस दौरान जो 4 मरहले रह गए हैं या उनका जो अंजाम होने वाला है उस पर बहरहाल गुफ्तगू आइंदा 16 मई तक वक्फे से होती रहेगी। तो अगले प्रांत तक के लिए मुझे अली अब्बास और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।